यशवर्धन अपने बंगले में अनंत देसाई के साथ बैठा हुआ था। वहां पर एक आदमी और मौजूद था जिसका नाम मेहुल वर्मा था। मेहुल वर्मा निकोला में हुए रिपोर्टर के मर्डर से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स लेकर वहां आया हुआ था। जल्दी पढ़कर बताओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, यशवर्धन ने बेचैनी से कहा। इस रिपोर्ट से उसे बहुत उम्मीदें थी। ये एकमात्र जरिया थी जो उसे सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकती थी। मेहुल वर्मा ने जल्दी से रिपोर्ट का लिफाफा खोला और उसे पढ़ने लगा। रिपोर्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि हत्या से पहले उसे बहरहमी से पीटा गया था। उसके साथ काफी टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर पर मारने पीटने के साथ बहुत सी खरोचों के भी निशान थे। हो सकता है कि राघवेंद्र ने उसे सीधे मारने के बजाय पहले टॉर्चर किया हो। उसके आदमी अक्सर यही करते हैं, पहले किसी को अच्छे से मारते पीटते हैं और फिर ही उसका मर्डर करते हैं, यशवर्धन ने बताया। अनंत देसाई ने उसकी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जब उन्हें किसी का कत्ल करना ही होता है तो पहले उन्हें मारपीट कर उसके साथ अत्याचार करने का क्या मतलब हुआ? उन तीनों को रिपोर्टर के लिए काफी बुरा लग रहा था। मेहुल वर्मा रिपोर्ट को आगे पढ़ता हुआ बोला, इसके अलावा मारने से पहले उसे शराब भी पिलाई गई थी। मैंने कहा ना, वो पूरा टॉर्चर करते हैं। उनका जिस हिसाब से मन होता है उसी हिसाब से वो सामने वाले को खिलौना बनाकर उससे खेलते हैं, यशवर्धन ने कहा। सही कहा आपने सर, मेहुल वर्मा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर से रिपोर्ट पढ़ने लगा। आपने जो कुल्हाड़ी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी थी उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास है। मर्डर वेपन कुल्हाड़ी जैसा ही कोई हथियार हो सकता है जो आगे से धारदार हो। उसके सिर पर तेजी से सिर्फ एक वार किया गया था जो सिर के बीचों बीच हुआ था। वार इतना गहरा था कि उसे मरने में कुछ मिनटों का भी टाइम नहीं लगा होगा। क्या कुल्हाड़ी पर मिला खून और बाल उसके डीएनए से मैच करते हैं, यशवर्धन ने पूछा। जवाब में मेहुल वर्मा ने दूसरा एनवलप खोला और उसमें लिखी रिपोर्ट को अपने मन में पढ़ा। हाँ, कुल्हाड़ी पर लगा खून और बाल रिपोर्टर के ही हैं, और आपने मुझे जो फिंगरप्रिंट का सैंपल दिया था उसमें राघवेंद्र प्रताप के फिंगरप्रिंट इस कुल्हाड़ी के प्रिंट से मैच करते हैं। जैसे ही मेहुल वर्मा ने अपनी बात खत्म की, यशवर्धन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। देखिए, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच रहनी चाहिए, इसके लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, देसाई जी ने मेहुल वर्मा से कहा। आप बेफिक्र हो जाइए देसाई जी, हम अच्छे से जानते हैं वैदेही रघुवंशी अगर किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो उसे इंसाफ दिलाकर ही छोड़ेंगी। वैसे ये रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी मैंने वैदेही रघुवंशी को मेल कर दी है, मेहुल वर्मा ने बताया। रिपोर्ट वैदेही को भेजने की बात सुनकर यशवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रिपोर्ट वैदेही को किसी को भेजने की जरूरत क्या थी, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है, देसाई ने पूछा। अरे सर, बात भरोसे की थोड़ी ना है, हमें अच्छा लगता है जब वैदेही जी अपने शो में क्रिमिनल का पर्दाफाश करती है, हर एक सबूत और उससे जुड़े तथ्यों पर गौर से चर्चा करती है, हमने सोचा आपसे ज्यादा जरूरत उन्हें इस रिपोर्ट की होगी, देसाई जी उसकी बात का कुछ जवाब देते उससे पहले यशवर्धन ने कहा। ठीक है, लेकिन ये बात आप हम लोगों के अलावा किसी से शेयर नहीं करेंगे, अच्छा हुआ आपने ओरिजिनल रिपोर्ट वैदेही जी को भेज दी, डुप्लीकेट कॉपी सिर्फ हमारे पास ही है ना, इसके अलावा तो कोई और कॉपी नहीं बनाई ना, मेहुल वर्मा ने नामे सिर हिला दिया। देसाई जी, वर्मा जी को उनका मेहनत ताना दे दीजिए, यशवर्धन ने कहा। अनंत देसाई ने उनकी बात पर हामी भरी और अंदर चले गए। वो बाहर आए तब उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था। बाहर आकर उन्होंने ब्रीफकेस मेहुल वर्मा के सामने खोला, वो नोटों से भरा हुआ था। मेरे हिसाब से इतने काफी होंगे, उन्होंने ब्रीफकेस खोलकर मेहुल वर्मा की तरफ किया। आपकी कृपा दृष्टि चाहिए सर, पैसे तो चाहे आप थोड़े और भी कम देते तो चल जाता, बोलते हुए मेहुल वर्मा ने ललचाई नजरों से ब्रीफकेस को देखा। देसाई जी ने तुरंत ब्रीफकेस को बंद कर दिया और उसे मेहुल वर्मा को पकड़ा दिया। ब्रीफकेस लेने के बाद उसने दोनों हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देसाई जी बोले, आपने इसे कहा नहीं था क्या कि रिपोर्ट सिर्फ हमें ही देनी है? क्या फर्क पड़ता है देसाई जी, वैदेही जी भी अब अपनी ही है और हमें उन पर पूरा विश्वास है, उनका कोई भी कदम हमारे खिलाफ नहीं उठने वाला। आपको नहीं लगता सर कि आप कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहे हैं उन पर? नहीं देसाई जी, आप तो इतने सालों से हमारे साथ हैं, हमारे हर एक कदम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, हम किसी को जल्दी से अपना नहीं मानते। मानता हूं कि वैदेही से मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनसे एक अपनापन, एक जुड़ाव सा हो गया है, यशवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और वही जुड़ाव और अपनापन क्या वैदेही जी भी आपके लिए महसूस करती हैं, अनंत देसाई ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते, उनकी आंखों में देखकर ये लगता है कि उन्हें भी हमारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। एक बार ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं उसके बाद हम वैदेही से खुलकर बात करेंगे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन आप और वैदेही जी साथ होंगे। अगर आप दोनों साथ आते हैं ना सर, तो फिर राघवेंद्र जैसे लोग पनपने के बारे में सोच भी नहीं सकते, अनंत देसाई ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन रिपोर्ट्स का क्या करें, यशवर्धन ने बात का रुख बदलते हुए पूछा। शाम तक इंतजार करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक आप तैयार हो जाइए, पार्टी के लिए भी निकलना है। जानते हैं ना, हर बार की तरह सब लोगों की नजरें चुनाव के परिणामों पर ही टिकी हैं। बेवजह वहां पर इकट्ठा होकर नतीजों का इंतजार करते हैं, जबकि अच्छे से जानते हैं कि जीत हमारी ही होनी है। चलिए ठीक है, फिर हम भी इस तमाशे में शामिल होने के लिए तैयार हो ही जाते हैं, यशवर्धन ने कहा और वहां से अंदर तैयार होने के लिए चला गया। रिपोर्ट उसी के पास मौजूद थी। सुबह के 10 बजे थे और महाराष्ट्र विकास पार्टी के ऑफिस में सभी नेताओं का जमावड़ा लगा था। सभी की नजर सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर थी, जिसमें हर पल की अपडेट्स दिखाई जा रही थी। राघवेंद्र और यशवर्धन भी वहीं पर मौजूद थे। अब तक हर तरफ उन्हीं की पार्टी लीड कर रही थी। तो क्या जश्न की तैयारियां शुरू करवा दे? त्यागी जी खड़े होकर बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं त्यागी जी, इस बार भी जीत हमारी ही होने वाली है, उनके पास बैठी माया देवी ने कहा। जीत से पहले जीत का जश्न मनाने वाले बेवकूफ कहलाते हैं माया जी, राघवेंद्र ने उसकी बात को बीच में काटकर जोर से बोला। हाँ माया जी, राघवेंद्र जी सही कह रहे हैं, यशवर्धन ने मुस्कुराकर राघवेंद्र की बात पर हामी भरी। हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सब लोग यशवर्धन की तरफ हैरानी से देख रहे थे। ये पहली बार हुआ था जब यशवर्धन राघवेंद्र की बात का समर्थन कर रहा था। लगता है त्यागी जी, आपको आगे के लिए 2 उम्मीदवार खड़े करने की जरूरत नहीं है, आपके भावी उम्मीदवार तो अभी से एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, माया देवी ने उन पर तंज कसा। हाँ तो इसमें गलत ही क्या है माया जी, यही हमारी पार्टी का रूल है कि यहाँ हम खुद की भलाई से पहले पार्टी के विकास और आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। अब यशवर्धन भी यही कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, राघवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। संभलकर राघव बाबू, माया जी ने जवाब में कहा, कहीं आपकी बात का सपोर्ट करने के बदले में यश बाबू आपसे खुद को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन न मांग ले, ये राजनीति है, यहाँ पर बिना फायदे के आपके दोस्त भी आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, फिर आपका और यश बाबू का रिश्ता तो हम सबको अच्छे से पता है। राघवेंद्र ने माया देवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माया देवी की बातों ने उसे सोच में डाल दिया था। उसने यशवर्धन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
पार्टी के बाकी के लोग चाय नाश्ते में व्यस्त हो गए तो वही राघवेंद्र यशवर्धन की तरफ देखकर सोच रहा था, आज उसके चेहरे पर परेशानी के बजाय ये खुशी क्यों दिखाई दे रही है, और ये हमारी बात का कब से सपोर्ट करने लग गया? लल्लन को फोन करके आगाह करना होगा, कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। अब हम सीएम की कुर्सी और हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दे सकते, चाहे वो वैदेही रघुवंशी हो या यशवर्धन सिंह। राघवेंद्र वहां से उठा और लल्लन से बात करने के लिए चला गया। उसके आसपास कोई नहीं था। उसने फिर भी बिल्कुल धीमी आवाज में फोन पर कहा, वैदेही रघुवंशी पर नजर बनाए हुए हो ना? जी भैया जी, उन्हीं के अपार्टमेंट के आगे नजर लगाए बैठे हैं, हमारे साथ जीवन भी मौजूद है, अब तक तो वैदेही जी बाहर भी नहीं निकली, लल्लन ने जवाब दिया। दोपहर के 2 बज रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक बाहर नहीं निकली? कहीं तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर तो नहीं चली गई? नहीं भैया जी, कल रात से नजर जमाए हुए हैं, रात को 4:30 बजे के करीब घर आई थी, तो हो सकता है कि अब लेट तक सो रही होगी, काम पर भी उसकी सहेली अकेली ही गई थी। बोलते हुए लल्लन की नज़र वैदेही की बालकनी पर पड़ी, जहां पर वो कॉफ़ी मग लिए खड़ी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वैदेही ने अपना हाथ बालकनी से बाहर निकाल रखा था। उसे देखते ही लल्लन बोला, ये लो भैया जी, हो गया कन्फर्म। वैदेही जी अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर हाथ में बड़ा सा कप लेकर अपना एक हाथ बाहर निकालकर बारिश में भीग रही है। ठीक है, उस पर नज़र जमाए रखना, अगर वो अपने घर से एक कदम भी बाहर निकाले तो उसका पीछा करना और हमें हर पल की अपडेट देते रहना, राघवेंद्र ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। लल्लन और जीवन वैदेही पर नज़रें जमाए हुए थे। वैदेही कुछ देर तक वहीं पर खड़ी रही और फिर अंदर चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राघवेंद्र, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है कि तुम कितने अनप्रिडिक्टेबल हो। मुझे अच्छे से पता था कि तुम मेरे पीछे अपने आदमियों को जरूर भेजोगे ताकि वो अपने हर पल की खबर मुझे दे सकें। रात को प्रतीक सर और देव को इस बात की हैरानी थी कि बिना किसी काम के हम देर रात तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं। मुझे भी अपनी नींद बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलकर बहुत मजा आ रहा है राघवेंद्र। हर बिल्ली इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी लोग समझते हैं। लगता है तुमने टॉम एंड जेरी नहीं देखा, जहाँ जेरी हर बार टॉम पर भारी पड़ता है। वैदेही खुद से बातें कर रही थी। उसकी कॉफ़ी खत्म हो गई तो उसने एक बार फिर नीचे की तरफ नज़र डाली। लल्लन और जीवन वहीं पर खड़े थे। उन्हें वहां देखकर उसके चेहरे पर हंसी के भाव थे। अब अपना अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है, वैदेही ने खुद से कहा और अपनी बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं बालकनी का दरवाज़ा बंद होते ही लल्लन और जीवन भी चौकन्ने हो गए थे।